ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय श्री शुक उवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविन्द दग्धानाकर्ण्य पाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययौ कुरुन् भीष्मं कृपं स विदुरम् गांधारीं द्रोणमेव च तुल्यदुःखौ च संगम्य हा कष्टमिति होचतुः। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा विज्ञातार्थः वास्तविकता को जानते हुए अपि भी गोविंदः श्री कृष्ण दग्धान लक्षा भवन में जले हुए आकर्ण्य सुनकर पांडवान पांडवों को कुंतिंच और कुंती को कुल्य करणे कुलोचित संव्यवहार के लिए सह रामः श्री बलराम जी के साथ ययो गए कुरुन कुरु देश में हस्तिनापुर। सप्तपंचाशत्तमे तु पुनः धनुर्वधे प्राप्तं च दुर्जसो मास्टि कृष्णो अक्रूरा हृतान्मणे। इसे 57वें अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि सतधनवा का वध करने के कारण भगवान पर पुनः दुर्जस आ गया, तो उस दुर्जस को मिटाने के लिए उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया काशी से और उनके द्वारा मणि को प्रकट किया। अक्रूर को भगवान ने उस मणि का पात्र समझा और एकांत में अक्रूर जी से बात करके तब वे हस्तिनापुर गए थे, ऐसा वर्णन है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विज्ञातार्थ है अपि श्री कृष्ण यह जानते थे कि पांडव बिल द्वार से लक्षा भवन से निकल गए हैं, परंतु इधर सब जगह यह प्रचार हुआ हल्ला हुआ कि लक्षा भवन में पांडव अपने मां के साथ जल गए। उनको जलाने के लिए ही दुर्योधन वह भवन बनवाया था जिसमें उनकी सम्मति थी धृतराष्ट्र महाराज की, सब मिल करके एक ऐसा भवन बनाए थे जिसमें ऐसे मैटर लगाए गए थे, ऐसे मटेरियल लगाए गए थे जो बहुत फ्लेमेबल थे, बहुत ज्वलनशील थे, और थोड़ा सा ही आग पकड़ करके पूरा भवन अब्लेज हो जाता है। तो इस तरह से भवन बनाकर और महाराज धृतराष्ट्र ने कहा था कि बेटा, युधिष्ठिर से कहा था कि बेटा यहाँ 100 लड़के हैं मेरे यहाँ संघट है, तुम राजा के पुत्र हो, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा भवन बनवा दिया हूँ, वहां जाकर के तुम लोग रहो। तो उसको जतु गृह कहते हैं या लक्षा भवन। तो उसमें महाराज युधिष्ठिर रहते थे, लेकिन एक दिन स्वयं ही भीम ने आग लगाया महाराज युधिष्ठिर के कहने से, और विदुर जी ने एक टनल बना दिया था, सुरंग बना दिया था भीतर से, तो उस रास्ते से पांचों भाई अपने मां के साथ निकल गए आग लगाकर। परंतु इधर सर्वत्र प्रचार हो गया कि पांडव जल गए, यहां तक कि पांच पुरुषों का शव झुलसा हुआ, जला हुआ, और एक स्त्री का भी शव मिला। तो एक भिलनी थी, वो आई थी अपने पांच पुत्रों के साथ, बरामदे में सो गई थी, जिसका पता नहीं था भीम को, और वह जल गए, पांचों भाई जल गए और वो भिलनी जल गई थी। सवेर रात में तो आग लगी थी, तो हल्ला हुआ, आग लगी है, सब लोग दौड़े, तब तक तो जल चुका था घर। इसके बाद खोजबीन की गई तो सौ मिले। तो अब किसको संदेह हो सकता था कि ये पांडव नहीं है, अब तो पहचानना कठिन था किसका शव। तो हल्ला हो गया, सर्वत प्रचार हुआ, द्वारका में यह संवाद गया कि भगवान के फुफेरे भाई और उनकी फुआ सब जन। तो वहीं से कथा चालू कर रहे हैं। विज्ञातार्थ है अपि, अर्थ का अर्थ वास्तविकता। भगवान जानते थे कि पांडव जले नहीं है, परंतु द्वारका में जब खबर गई, उन्होंने क्या खबर पाया कि पांडवन दग्धान, पांडव जल गए, दग्ध हो गए, और कुंती च दग्धान इति, और कुंती भी जल गई। यह सुन करके भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ हस्तिनापुर आए। क्यों? कुल्यकरण है। कुल्यकरण का अर्थ है कुलोचित व्यवहार के लिए ऐसे अवसर पर जाया जाता है, दुख में हाथ बटाया जाता है। अपनी बुआ मर गई है और अर्जुन जैसे मित्र मर गया है, युधिष्ठिर जैसे भाई, इस तरह से तो क्यों नहीं दुख की बात होगी। दोनों भाई बहुत रो रहे थे, द्वारका से ही प्रारंभ कर दिए रोना, पूरे रास्ते रोते हुए गए, और वहां जा करके जब मिलते थे भीष्म पितामह आदि से तो वहां भी रो रहे थे। यद्यपि विज्ञातार्थ जानते थे कि वे नहीं जले हैं, वे सुरक्षित हैं, बिल द्वार से निकल गए हैं, लेकिन ये भगवान की लीला है। बलराम जी भी रो रहे थे, वो भी रो रहे हैं। वहां जाकर के मिले भीष्मम कृपम सविदुरम गांधारीम द्रोणमेव च तुल्य दुखौच सौ संगम हा कष्टमिति ह उच्चतु। वहां जाकर सबसे पहले लोग भीष्म पितामह से मिले, कृष्ण बलराम, और भीष्म पितामह भी जानते थे कि मर गए हैं पांडव, उनको पता नहीं था कि वो नहीं मरे। कृपम और कृपाचार्य को पता था कि मर गए, यहां तक कि विदुर जी तक को विश्वास था कि वो मर गए, क्योंकि वो छह लाश जो मिला जला हुआ। तो अब विदुर जी को भी संदेह नहीं, विदुर जी को भी विश्वास हो गया कि पांच मर गए। तब विदुर जी भी बहुत दुखी थे, और कृपाचार्य भीष्म पितामह गंधारी, माता गंधारी को धृतराष्ट्र और दुर्योधन के इस दुराभिसंधि का पता नहीं था, तो वो भी बहुत दुखी थे। और चकार से और भी अनुक्त कुछ लोगों से मिले दोनों भाई, तुल्य दुख हो, जितना भीष्म पितामह आदि को दुख था उसी तरह से इन दोनों भाइयों को भी दुख था, तुल्य दुख। भीष्माद भी तुल्य दुख, भीष्मादि के समान ही इनको दुख था। और हा कष्टम इति हो चतु, हाय हृदय, इतना कष्ट आ गया, ऐसे आ गया, हाय हाय, हमारे पांच भाई मर गए और बुआ मर गई, यही दोनों भाई कहते थे। ये अद्भुत भगवान की लीला है। जब भगवान अवतार लेते हैं और संबंधी बनते हैं तो सचमुच संबंधी हो जाते हैं, वो नाटक नहीं करते हैं। वो दोनों भाई रो रहे थे तो वास्तव में दुख अनुभव से रो रहे थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तुल्य दुख, दोनों को तुल्य दुख था। भीष्मादि को जितना दुख था उतना ही दोनों भाइयों को दुख था। तो इस तरह से विलाप कर रहे थे। अब देखिए यहां से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा नहीं मानने के कारण सत्राजित पर अनर्थ आया। यद्यपि वे विवाह कर चुके थे अपनी पुत्री का सत्यभामा का, मणि भी दिए थे, भगवान ने लिया नहीं था, लेकिन जीवन में इतना बड़ा पाप हो गया था, डायरेक्ट भगवान के आदेश को उसने ठुकराया था, वह पाप आगे उसके मृत्यु का कारण बनेगा। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम जी चले गए थे हस्तिनापुर, तो ये बीच में अवसर पाकर अक्रूर और कृतवर्मा सतधनवा के पास पहुंचे, उसके घर। सतधनवा एक वीर व्यक्ति था, था बदमाश, ऐसा अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो लब्धवा एतद अंतरम राजन, हे महाराज परीक्षित, आप राजनीति जानते हैं, यह अवसर पाकर के कृष्ण बलराम नहीं है। तब सतधनवा नमुचतु, सतधनवा से बोले, कौन कौन? अक्रूर कृत बर्माणव, अक्रूर और कृत बर्मा, मणि कस्मन् न गृह्यते, मणि कस्मन् न गृह्यते त्वया इति शेष, तुम मणि क्यों नहीं ले लेते हो? और उसको जाकर दोनों बहकाने लगे। एक तो वैसे ही वो खराब व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में ऐसा नहीं था कि मणि लेने का साहस कर पाए सत्रजीत के यहां से। तो ये लोग दोनों जाकर कहे, कस्मात मणि न गृह, मणि कस्मात न गृह, तो क्यों नहीं मणि ले लेते हो? अब जानते हो समन तक मणि कितना महत्वपूर्ण है, कितना सोना उगलता है, ले लो। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे कह रहे हैं, कृष्ण के ससुर हैं सत्राजीत, सत्यभामा के पिता हैं, तो कैसे मैं ले सकता हूं, क्या आपका कहने का इरादा है? उसे जाकर के मांगू, वो मांगने पर देगा, और जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? कृष्ण बलराम को पता लगेगा तब, तो वो कहता, तुमको पता है कि ये दोनों हस्तिनापुर गए हैं? तो दोनों हस्तिनापुर गए हैं, यहाँ है नहीं, तो इसलिए कृष्ण बलराम से जो भय होगा वो है नहीं। फिर भी वो कहा कि आखिर क्या उपाय हो, तो देगा नहीं, जीवित रहते हुए तो दे नहीं सकता है। तब ये लोग कहते हैं, तो उसे मारो, मार करके लो। लेकिन सतधनवा कहा कि नहीं, आखिर क्यों मारे, क्या अपराध किया है उसने? तो ये दोनों कहते हैं, यो अस्मभ्यम प्रतिश्रुत्य कन्या रत्नम विगर्ह्य न कृष्णाया दान सत्राजीत कस्मात भ्रातर मन्वियात। वह प्रतिज्ञा किया था, वचन दिया था मेरे साथ विवाह करने के लिए सत्यभामा का, कृतवर्मा ने कहा है, उसमें अक्रूर जी भी शामिल थे, वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन दोनों साथ में थे तो दोनों का ही वचन माना जाएगा। कि अस्मभ्यम प्रतिश्रुत्य, हम लोगों के प्रति वचन दान दिया था, प्रतिज्ञा किया था सत्राजीत कि सत्यभामा का विवाह करेंगे, लेकिन उस कन्या रत्न को, श्रेष्ठ कन्या को कृष्णाय अदात, कृष्ण के लिए दे दिया। हमें इसका दुख नहीं है कि कृष्ण से विवाह किया, दुख इस बात का है कि कृष्ण से विवाह किया उसने अपनी पुत्री का, तो हमारा अपमान हो गया। आखिर लोग तो कहेंगे कि कृतवर्मा बेकार था, कोई गुण नहीं था, इसीलिए सत्राजीत ने कह करके भी कन्या दान नहीं, तो बिगर है ना, इसमें मेरी निंदा, आखिर हमारी कितनी बड़ी बदनामी किया। शुरू में ही नहीं कहा होता कन्यादान के लिए, विवाह की बात नहीं किया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कह करके और फिर प्रचार हो कि नहीं नहीं सत्राजीत विवाह नहीं किए क्योंकि कृतवर्मा में बहुत दोष है, या क्रूर जी और कृतवर्मा उसको जाकर बहका रहे थे, उसके मन में भाव पैदा कर रहे थे कि ये मारने लायक आदमी है सत्राजीत, इस तरह से वचन दे करके और कृष्ण से विवाह कर दिया, कौन गलती किया जो कृष्ण से कर दिया। कुछ आचार्यों का मत है कि अक्रूर जिससे भगवान मिल करके गए थे हस्तिनापुर और कहे थे कि आप प्रधान हैं, आप जो भी उचित हो करते रहिएगा, तो उनकी तो इच्छा थी कि इस तरह से लोक में दिखाया जाए कि भगवान की आज्ञा भंग करने का क्या दुष्परिणाम होता है। जगत के हित के लिए भगवान इस बात को प्रकाशित करना चाहते थे। तो अक्रूर जी से वो बहुत मिलकर गए थे कि जो भी उचित होगा, आप जो भी सोचेंगे सब होगा, और आप तो हमारे चाचा हैं, हमारे आंख हैं, सब कुछ हैं, तो चले गए थे। तो एक प्रकार से भगवान की भी अनुमति थी अक्रूर जी के लिए, डायरेक्ट उन्होंने कहा नहीं था। तो अक्रूर और कृतवर्मा जाकर कहने लगे कि हमको प्रतिज्ञा करके कन्या नहीं दिया, कन्या भी दे दिया, कृष्ण को रत्न भी दे दिया, कन्या रत्नम च, अथवा कन्या रत्नम, कन्याओं में श्रेष्ठ सत्यभामा को दे दिया। तो सत्राजित भी क्यों नहीं अपने भाई के मार्ग पर ही चला जाए, कस्मन न सत्राजित कस्मत भ्रातृमन, क्यों नहीं अपने भाई के मार्ग पर जाए। भाई किस मार्ग पर गया था, प्रसेन मर गया था, तो कस्मन मृतम इति अर्थ, क्यों नहीं ये भी मरे। सत्राजित को भी प्रसेन के मार्ग पर ही क्यों न भेज दिया जाए। प्रसेन कौन मार्ग पर गया था, परलोक मार्ग, मतलब मर गया था। ये भाषा अजीब है, वह भी क्यों न मरे, तो मारो। इस तरह से बहुत बहुत लोग समझाए मारने लायक, और धन बहुत मिलेगा। एवं भिन्न मत इस्ताभ्याम सत्राजितम असत्तम शयानम अवधि लोभात् सपाप छिन्न जीवित। इस प्रकार इन दोनों के द्वारा उसकी मति भिन्न हो गई। भिन्न मति ही शब्द बता रहा है कि उसका अपना कोई निर्णय नहीं था इस प्रकार का, परंतु दोनों ने इतना इंस्टिगेट किया, इतना उसे चढ़ाया बढ़ाया कि वो बुद्धि बदल गया। अब उसके मन में आ गया कि तो बहुत बड़ा लाभ है, सत्राजित भी गलती किया है और धन जो प्राप्त होगा वो तो कहना ही नहीं, इतना बड़ा। तो गया और सोए हुए सत्राजित का वध कर दिया। क्यों किया? लोभात, लोभ से। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सच कहिए तो उसकी उम्र खत्म हो गई थी, मतलब सब धनवा की भी। सब पाप अच्छे जीवित, ऐसा काम करने जा रहा है और भी थोड़े जीवित रहेगा। सत्राजित को तो मार दिया, लेकिन अब तो तुरंत इसकी भी मृत्यु होगी ना। कृष्ण को पता चलेगा, बलराम जी को, तेरे तो कभी छोड़ेंगे नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो सत्राजित को मारा क्या, उसकी भी मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई थी, इसीलिए उस मृत्यु ने ही प्रेरित किया उसको सत्राजित का वध करने। कोई बहुत बड़ा दुष्कर्म कोई कर देता है तो समझना चाहिए कि उसकी आयु खत्म हो चुकी है। अब इतना बड़ा साहस किया, अब कि सत्राजित का वध किया, तो अब ये भी मरने वाला है। जिस समय वध कर रहा था सत्राजित का, तो स्त्रियों ने देखा, स्त्रियां हाय हाय कर रही थी, स्त्रीणाम विक्रोश माना नाम, सब रोने लगी, ऐसा मत कीजिए मत कीजिए, सब ने पहचान भी लिया कि सब धनवा है, और सब रो रहे थे, मना कर रहे थे। क्रंद पीना मनाथवत, अनाथ की तरह बेचारी, असहाय की तरह स्त्रियां रो रही थी, लेकिन उस तरह से वध कर दिया जैसे कोई कसाई पशुओं का वध कर देता है, पशु का जैसे बकरा आदि का वध कर देता है। इस तरह से उसने वध कर दिया और मणि मादा जगमिवान, और मणि लेकर के चला गया। इधर रात की घटना थी, रात में सोया था, जाकर वध कर दिया। अब सवेरे क्या हुआ? सत्यभामा च पितरम हतम वृक्षसु चार्पिता व्यलपत्ता तेती हा हतास्मेति मुह्यति। जब सवेरे सत्यभामा जी ने सुना कि मेरे पिता की हत्या हो गई, और जाकर के देखा भी, तो सुचारपिता उस शोक से व्याप्त हो गई, मन में शोक व्याप्त हो गया, विलाप करने लगी, हा पिताजी हा पिताजी, हा तात हा तात, हाय मैं मारी गई, मैं पितृहीन हो गई। इस तरह से सत्यभामा जी विलाप कर रहे थे। बाद में एक कड़ाही में, जो लंबा ऐसा था, कड़ाही में तेल भर करके और उसमें अपने पिता के शव को डाल करके कि वह सड़ने न पाए, और वह सत्यभामा जी सीधे रथ से हस्तिनापुर गई, क्योंकि भगवान वहां गए हुए थे। सत्राजित को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सत्राजित का संस्कार भी भगवान ही करने वाले थे, क्योंकि वही दामाद थे, जमाता थे, तो इसलिए भी सत्राजित का संस्कार करने के लिए, दाह संस्कार आदि करने के लिए भगवान ही थे। तो अब उनको खबर देना था, और दूसरी बात है जो घटना घट चुकी थी इस तरह से, तो इस पर भी कोई न कोई प्रतिक्रिया करनी थी, इसलिए वो चली गई सत्यभामा जी हस्तिनापुर। कृष्णाय विदितार्थ तप्त आचख्यो पितुर्वधन, बहुत तप्ता थी, तप्ता आचख्यो कहा, अपने पिता के वध के विषय में सारी बातें सुनाया कि सब धनवा ने किया, ऐसे किया, ये किया, वो किया, कृष्ण से सुनाया। विदितार्थाय कृष्णा, जब कृष्ण सब जानते थे, कृष्ण को यह पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, उसको विदित अर्थाय कहा था। ऐसा नहीं कि घटना होने के बाद भगवान जान गए थे, भगवान पहले से सब जानते थे कि ऐसा होगा, सत्राजित मारा जाएगा, लेकिन बड़े ध्यान से भगवान सुने और सुन करके रोने लगे। हाँ, उन पर सब जगह से कष्ट ही आ गया। तद आकर्णेश्वर राजन अनुसृत्य निर्लोकताम अहो न परमम कष्टम इत्यस्राक्ष विलय पतुः। दोनों ईश्वरों ने जब सुना, कृष्ण बलराम ने सुना कि हमारे ससुर का वध हो गया, तो मनुष्य लोक का अनुसरण करते हुए दोनों लगे विलाप करने। हाय रे, सब ओर से हम लोगों पर कष्ट ही कष्ट आ गया। इधर एक कष्ट सुन करके आए थे हस्तिनापुर के, हमारे फुफेरे भाई जल गए लक्षा भवन में, फुआ जल गई, और इधर ये सुन करके आए, तब तक उधर ससुर मार दिए गए, चारों तरफ दैव हम पर पड़ गया है, बहुत दुख हो रहा है, विपत्ति ही विपत्ति है, ये कह करके दोनों भाई खूब विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जानते हो, कहते हैं कि भगवान को सब पता था, फिर भी दोनों मनुष्य निर्लोकता अनुसृत मनुष्य के भाव को अंगीकार करके विलाप कर रहे थे, और अश्राक्ष आंखों में आंसू भरे थे, उमड़े थे, सचमुच विलाप कर रहे थे, न ड्रामा नहीं कर रहे थे, रो रहे थे। तो आगत्य भगवान तस्मात् सभार्ज साग्रजपुरम, वहां पर पांडवों की अंत्येष्टि क्रिया आदि करके, ये जो होता है सब कुछ उसमें भाग ले करके, और वहां से दोनों भाई आए अपनी पत्नी के साथ और बड़े भाई के साथ भगवान द्वारका आए। आकर के वे सब धनवानम हंतुम हरतुम मणिम ततः आरे थे। भगवान ने आरंभ किया सब धनवा को मारने के लिए और मणि खोजने के लिए, दो चीज का पता लगाना था कि कहाँ है सब धनवा, कहाँ है और मणि कहाँ है। भगवान ने आरंभ किया, आरंभ किया का मतलब कि सबसे पहले जब कृष्ण जी बलराम जी के साथ भगवान आए, तो उन्होंने ये पता लगाया कि सब धनवा जो वध किया है हमारे ससुर का, तो और कौन कौन लोग उसमें सहायक थे, ये बुद्धिमानी थी भगवान, ये पता लगाना प्रारंभ किए। ऐसा नहीं कि अकेले वो ये काम किया होगा, इतना साहस उसका हो नहीं सकता, तो कोई न कोई यहाँ पर सहायक होगा, और कौन कौन थे, किसने इंस्टिगेट किया, कौन साथ दिया, इसके लिए भगवान पता लगाने लगे। और सद्धनवा का वध करना था, सद्धभामा जी ने साफ कहा था कि सद्धनवा ने मारा है मेरे पिताजी को, तो लाइफ फॉर लाइफ, उसको तो जीवन दंड देना ही था सद्धनवा को, लेकिन और कौन कौन लोग भाग लिए हैं इसकी खोज करने के लिए भगवान अपने अंतरंग बंधुओं से मिलना प्रारंभ किए। अपने आदमियों से मिल करके काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि और फंस जाए कोई विशेष विपत्ति में, किसी को मारने चले और संकट में पड़ जाए, तो अपने लोगों से मिलना चालू किए। कृष्ण जब आए द्वारका और इस बात का पता चला सब धनवा को कि वे गोष्ठी कर रहे हैं मेरे वध के लिए और मणि के लिए, सोपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राण परीक्षा, अब तो प्राण रखने की लालसा से कैसे मैं जीऊंगा, अब कैसे जीऊंगा कृष्ण से द्रोह करके इतने बलवान से। जैसे कृष्ण को तो ऐसे भी बलवान कहेंगे कि बलवान, जैसे धन जिसके पास धनवान कहते हैं, तो इनका बड़ा भाई तो खास बल ही है, तो बलवान है जो हमेशा बल से जुक्त है, तो ऐसे बलवान से बैर किया अब कैसे प्राण बचेगा। तो वो सबसे पहले कृतवर्मा के पास गया, सहाय कृतवर्माणम अयाचत सचा ब्रवीत, कृतवर्मा के पास जाकर के कहा कि अब हमारी प्राण हमारा प्राण बचाइए, अब आपके कहने से मैं यह कार्य किया, सत्राजित का वध किया, मेरा प्राण बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो कृतवर्मा तो भगवान को जानता था, उनकी महिमा को, वो कहता है सच अब्रवीत, कृतवर्मा कहा न हम ईश्वर यो कुर्याम हेलनम राम कृष्ण यो, मैं कृष्ण और बलराम का प्रतिकूल नहीं कर सकता, कोई और होता तुमको मारना चाहता तो मैं धनुष बाण उठाकर देख लेता, लेकिन कृष्ण बलराम से विरोध नहीं कर सकता। जानते हो दोनों कौन है? ईश्वर यो, वे दोनों ईश्वर हैं, साक्षात भगवान हैं, उनसे मैं लोहा नहीं ले सकता। कौन क्षेमाय कल्पे तयोर ब्रजनमाचरण, कौन है तीनों लोकों में जो कृष्ण बलराम का अपराध करके और कुशल से रह सके? कोई नहीं है, हमारी क्या गिनती, हमसे तुम सहायता मांग रहे हो। अरे कंस सहानुगोपी तो जद्वेषा त्याजित श्रेया, तुमको पता है ना कि जिनसे द्वेष करने के कारण कंस का राज्य गया, प्राण गया, सब खत्म हुआ, कंस मरने वाला व्यक्ति था, लेकिन कृष्ण से द्वेष किया तो उस हालत में चला गया। और फिर उसके बाद उसका ससुर जरासंध सप्तदश संजोगान विरथ हो गया था, जरासंध भी युद्ध में 17 बार बिना रथ के लौटा था अपने घर, इसका सारी सेना मार दी गई थी, सब कुछ, हमेशा तपोवन में जाता था, विरथ हो गया था, उधर से रथ पर चढ़ कर आता था, मथुरा से पैदल जाता था ये हालत थी, 17 बार हारा, जरा संध जैसा व्यक्ति, तो हम किस गिनती में, हम कभी कुछ नहीं कर सकते। और खबरदार कभी कुछ कहना मत कि हमने तुमको कुछ कहा था, हम क्या जानते थे तुम इतनी मूर्खता करोगे कि स्त्रियां देख लेंगी उसका वध करने में, तुमको हमने कहा लेकिन बुद्धि भी दे क्या, उसने क्यों मारा, जब स्त्रियों ने देखा तो तुमने क्यों वध किया, अब तो बात खुल गई, हम अब कुछ भी सहायता नहीं करेंगे, और खबरदार कभी किसी से मत कहना कि मैंने भी कुछ कहा था। अब तो टका सा जवाब दे दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। और वो तो बेचारा प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था, कौन मरना चाहेगा, तो फिर वो प्रत्याख्यात चाकुरम पार्श्वी ग्राहम अयाचत, फिर वहां से जब जवाब मिल गया तो वो अक्रूर जी के पास गया, अक्रूर जी ने भी इसको इंस्टिगेट किया था, कहा भी होगा कि कोई संकट आएगा तो हम लोग देख लेंगे, ऐसे कहा भी होगा, लेकिन जब आ गया संकट तो अक्रूर जी कहते हैं सोप्या को विरुद्ध विद्वान ईश्वर और बलम, कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा इस संसार में जो दोनों ईश्वरों के बल को जानते हुए भी उनसे विरोध करेगा, तो हम कृष्ण बलराम के साथ विरोध नहीं कर सकते, वे दोनों ईश्वर हैं, दोनों भगवान हैं। वर्मा भी कह रहे हैं दोनों ईश्वर हैं, और क्रूर्ज भी कह रहे हैं दोनों ईश्वर हैं, दोनों ईश्वर से कौन लड़ेगा। यदम लीलया विश्वम सृज तवती हंति च चेष्टाम विश्वसृजोजस्य न विदुर्मोहिता दया। जानते हो इस विश्व की सृष्टि कौन करता है? तो कृष्ण और बलराम दोनों एक ही तत्व है, इसलिए एक वचन में बोल रहे हैं क्रूर जी। वही कृष्ण या बलराम इस विश्व की रचना करते हैं, इसको पालते हैं और संहार करते हैं। ये संपूर्ण विश्व उनके नियंत्रण में। अरे तो लगे कृष्ण कथा कहने सहायता क्या करेंगे अक्रूर जी, भगवान की महिमा गाने लगे। या इदम लीलया विश्वम सृजति अवति हंति च, सृजति सृष्टि करते हैं अकेले, और अवति रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, और हंति च चेष्टाम विश्व सृजोजस्य न विदुर मोहिता जा। यहाँ तक विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा शिव आदि भी भगवान के अभिप्राय को नहीं जानते हैं कि कब क्या करना चाहते हैं। कृष्ण के और बलराम के अभिप्राय को ये लोग भी नहीं जानते, वे सब उनकी माया से मोहित रहते हैं, भगवान की माया से मोहित रहते हैं। अतः हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, और कभी किसी से मेरा नाम मत बताना कि मैंने तुमको कुछ कहा था इस विषय में। और हम ये थोड़े कहे थे तुमको कि कृष्ण बलराम से युद्ध करो या हम उनसे रक्षा कर लेंगे। तुम्हारी मूर्खता थी जब तुम गए सत्राजित का वध किए, तो अगर तुमने देख लिया कि स्त्रियों ने देखा है तो क्यों क्या मारने की जरूरत थी। अब देखिए ये भी वही बात कहे जो कृतवर्मा का, तुमको पता है कृष्ण कौन है। यह सप्त हाय न सैलम उत्पाटय के न पाणिना दधार लीलया बाल उच्छलिंद्रमिवार्भक। अभी कृष्ण जब 7 वर्ष के थे, सप्त हाय न, हाय न करते वर्ष, 7 वर्ष के जब कृष्ण थे, तो एक हाथ से पर्वत उखाड़ लिए और एक ही हाथ पर 7 दिन धारण किया। उसके साथ मैं विरोध करूंगा जो इतने बड़े पर्वत को एकेन पाणि ना एक हाथ से धारण किया 7 दिन 7 रात। दधार लीलया, और वो भी खेल खेल में धारण किया, बांसुरी बजा रहे थे और गोवर्धन उठाए थे, कोई भार नहीं, आराम से उठाने में भी और धारण करने में भी कोई कष्ट नहीं हुआ। इतने भारी पर्वत को उस तरह से उन्होंने धारण किया था जैसे अर्भक कोई बच्चा बरसाती छत्ते को, कुकुरमुता को धारण करता है। बरसात में कहीं कहीं छत्ता उगते हैं, बच्चे उसको बरसात में लेकर ऐसे उड़ने का नाटक भी करते हैं, वैसे धारण किया था गिरिराज पर्वत को गोवर्धन को। उनके साथ मैं विरोध नहीं कर सकता। अब तो अक्रूर जी तो गिरवर धारण की कथा में रम गए, तो भक्त हैं, भगवान की लीला में रमे हुए, तो वो रक्षा की प्रार्थना कर रहा है तो एक कृष्ण कथा कह रहे हैं। इस तरह से एक उपलक्षण है, इस तरह का और अन्य भी बात वो सब कहे कि काली का उन्होंने दमन किया, यह किया, वह किया, सब किया। तो अक्रूर जी का तो स्वभाव है भगवान की लीला में अविष्ट रहते हैं, इसीलिए सब धनों की बातों पर उन्होंने कान ही नहीं दिया, सीधा भगवान की महिमा कहने लगे और कहे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। सद्धमा ने कहा कि तो आप क्यों कहे उस समय आकर, मेरे घर पर आकर के आप लोग कहे कि तू सद्धमा का वध करो। तो क्रूज ने कहा क्या मैं कहूंगा कुआं में कूदने के लिए, तो कुआं में कूदोगे? जैसे जैसे कहा था वैसे क्यों नहीं किया? अब तुम मरो चाहे जियो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो भगवान की बस भक्ति करते हैं। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुत कर्मणे अनंतायाधिभूताय कुटस्थायात्मने नमः। मैं तो भगवान कृष्ण को सदा नमस्कार करता हूं, जिनके कर्म अद्भुत हैं, जो अनंत हैं, समस्त जीवों के आदि कारण हैं, और जो तो मणि जिसके पास पाया जाएगा वही दोषी माना जाएगा। एक तो उसके मन में ये बात है, चाहे वह भी दोषी माना जाएगा, अथवा ये सोचा कि मैं ही भाग करके बच जाऊंगा और मणि अपने किसी व्यक्ति के पास रख दूंगा तो वो भी बचा रहेगा, इसलिए उसने अक्रूर जी को मणि दिया कि रखिए मणि रखिए, और अक्रूर जी रख लिए। वो भी तुरंत कपड़े में लपेट करके उसकी उसका प्रकाश रोक करके अपने अटैची में अलमारी में रख दिए, जो भी होगा देखा जाए। अब सब धनवा दूसरे दिन भागा द्वारका छोड़ करके, तो एकदम पता चल गया कि अब हमको कृष्ण मारेंगे, कृष्ण बलराम दोनों मिलकर। तो तस्मिन् अश्वमारोही सत योजन गमजय, तो अक्रूर जी के पास मणि रख करके उनकी अनुमति से ही रख करके और सब धनवा निकल गया द्वारका से। एक बहुत द्रुतगामी घोड़े पर चढ़ा हो जो एक बार में 800 माइल जा सकता था, एक बार चल करके 800 माइल चल करके बहुत तेज रफ्तार से, तब थकता था वो घोड़ा, ऐसे घोड़े पर चला। बहुत दूर होता है 800 माइल, मतलब लगभग 1200-1300 किलोमीटर होगा। इतना चलता था एक बार में, सत योजनगम, सत योजन चलता था। एक योजन 4 कोस का होता है, तो 100 योजन में 400 कोस, ऐसे घोड़े होते थे। पर तो चला, अंतर्जामी भगवान कृष्ण ने ही उसको प्रेरित किया कि अक्रूर के पास मणि वो फेंक दे या दे दे अक्रूर जी को, या दिया भागा। भगवान को पता लगा कि सत धनवा बहुत तेज गति से चलने वाले घोड़े से भाग गया द्वारका से, तो ये दोनों भाई भी चले गरुण ध्वज रथ पर चढ़कर, उस रथ पर जिस पर गरुण जी का चिन्ह था। गरुण ध्वज में आरोप्य आरुह्य रथम राम जनार्दन अन्वयाता महावेग रस्वय राजन गुरु द्रुहम। गुरु का अर्थ ससुर, ससुर का वध करने वाले सत धनवा के पीछे पीछे दोनों भाई बहुत तेज गति से चले। वो बहुत दूर निकल गए लेकिन ये लोग दोनों भाई रथ पर चढ़ करके चले। महावेग ही अश्वय, इस रथ में भी महावेगवान घोड़े लगे थे, तो वे भी उसी चाल से चलते थे लेकिन उससे और अच्छे घोड़े थे, वे और ज्यादा चल सकते थे। तो दोनों भाई तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर चढ़कर चले। भागते भागते द्वारका से, देखिए द्वारका कहाँ है और कहाँ है मिथिला, भागते भागते वो चला गया मिथिला में। मिथिलायाम उपवने विसृज पतितम हयम पद्भ्याम धावत संत्रस्त कृष्ण अप्यन्वद्रवत दृशा। तो जाते जाते मिथिला के उपवन में, राजधानी से बाहर बगीचे में, वो घोड़ा गिर गया, उसका सत धनवा का घोड़ा गिर गया, क्योंकि अब लगभग पूरा हो चुका था 100 योजन चल करके, तो उतने ही चल सकता था, इसके बाद थक करके घोड़ा गिर गया। जब घोड़ा गिर गया तो इसके बाद पैदल भागा, घोड़ा छोड़ करके सत धनवा पैदल भागा। जब पैदल भागा तो भगवान श्री कृष्ण भी रथ से उतर करके पैदल भागने लगे उसको पकड़ने के लिए। ये रथ पर नहीं गए, धर्म युद्ध था। जो बेचारा पैदल भाग रहा है तो भगवान भी पैदल उसका पीछा किए, बलराम जी रथ पर ही बैठे रहे। वो भी आ रहे होंगे धीरे धीरे, लेकिन भगवान पैदल उसको पकड़ने के लिए चले। पदा तेर भगवान तस्य पदा तिष्ठिग्मने मिना चक्रेण सिर उत्कृत्य वासुर्व्यचिनन मणि। क्योंकि वह पैदल भाग रहा था इसलिए भगवान भी पैदल ही भागे, और जाते जाते कुछ दूर जाने के बाद तीक्ष्ण धार वाले सुदर्शन से उसका सिर काट दिया भगवान ने। भगवान चाहते तो द्वारका के बाहर होते ही काट दिए होते, लेकिन भगवान की अद्भुत लीला है, इतने दूर तक पीछा किए इसका मणि मारने के लिए, सबल करने के लिए और मणि के लिए। और भगवान को पता है वो मणि अक्रूर जी के पास है, फिर भी नाटक ऐसा कर रहे हैं कि मणि उसके पास है, वो लेना है लेना है, तो मारे सिर उतर गया, गिर गया उसका लाश गिर गया। तो जो कपड़ा पहना था, पैकेट था, चाहे जो भी होगा, उसमें भगवान मणि देखने लगे।
खोजने लगे मणि कहाँ, व्यचिनो मृगया मास, मणि खोजने लगे, मरे हुए शरीर में कपड़ा के लपेटा था उसमें खोजने लगे सब, मणि नहीं मिला। तो यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान इतना दूर तक क्यों आए, इसका पीछा करते करते, और यहाँ आकर के दिखा रहे हैं कि मणि नहीं मिला। वास्तव में कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी की वंचना के लिए आए थे। श्री बलराम जी की आदत थी वे कृष्ण का संग कभी नहीं छोड़ते थे, और भगवान कभी कभी चाहते थे कि थोड़ा ये अकेले अपने प्रेमियों के पास जाएं और कुछ लीला द्वारका में हो सके। बलराम जी के रहने पर सब कुछ नहीं हो सकता था, कोई उपद्रव वहां हो नहीं सकता था, कोई चढ़ाई नहीं कर सकता था, आक्रमण नहीं कर सकता था कुछ। अब जैसे ब्रज में यदि बलराम जी साथ में गए होते तो कृष्ण काली दमन नहीं किए होते, उनको दह में कूदने ही नहीं देते, पकड़ करके रखते। तो कुछ लीला भगवान करना चाहते हैं, उसमें वो चाहते हैं कि बलराम जी ना रहे। तो ये चाहते थे कृष्ण कि हमारे बहुत बड़े भक्त हैं बहुलाश्व महाराज, जनकपुर के राजा जनक महाराज, उनके यहां बलराम जी को भेजना चाहते थे। इसीलिए ये सद्धन्वा का पीछा करते करते मिथिला के उपवन में चले गए, और वहां उसका मणि, उसके पास मणि खोज करके आ करके फिर बलराम जी से कहते हैं, अलब्ध मणिरागत्य कृष्ण आहाग्र जान्तिकम वृथा हतः सद्धनुर्मणि तत्र न विद्यते। भगवान ने आकर के अपने अग्रज बलराम जी से कहा कि वृथा हतः सद्धनु, सद्धनवा वृथा मारा गया, मणि तत्र न विद्यते, मणि इसके पास नहीं है, मैं तो खोजा मणि नहीं है, वृथा हतः, ये व्यर्थ मार दिया गया। और ये कहने लगे बताइए कितना दूर हैरान हुए, यहां मिथिला में आ गए। भगवान ही बोल रहे थे, क्योंकि बलराम जी को ये याद आ जाए कि बहुलाश महाराज से भेंट करना है, हमारे मित्र हैं। तो जब बलराम जी ने सुना तो समझ गए कि इसकी क्या इच्छा है। बलराम जी तो सर्वज्ञ समझ गए। तो बलराम जी कहते हैं, तथा आह बलो नूनम स मणि सत धनवना कस्मिंश्चित पुरुषे न्यस्त तमन वेश पूरम ब्रज। बलराम जी थोड़ा कुपित हो गए भीतर से, इसलिए यह प्रेम का कोप था कि मैं जानता हूं ये मुझको यहां भेजना चाहते हैं। तो बलराम जी ने कहा कि ठीक है, निश्चित है कि सब धनवा ने मणि किसी पुरुष के पास रखा होगा। बलराम जी को भी मालूम है कि वो अक्रूर के पास रखा है। लीला आवेश में भूल जाते हैं भगवान, लेकिन अब ध्यान में आ गया कि वो अक्रूर के पास रखा होगा। तो भगवान से श्री बलराम जी ने कहा कि वो कहीं रखा होगा पुरुषे न्यस्तम, और अक्रूर के पास रखा होगा, तम अन्वेष, जाओ तुम मणि खोजो द्वारका में, जाओ द्वारका और मणि का खोज करो, और मैं तो अब जा रहा हूं मिथिला नरेश के पास, वे मेरे बहुत प्रिय हैं, मैं उनसे भेंट करूंगा। अहम विदेहम इच्छामि द्रष्टुम प्रियतम मम। राजा विदेह है, जनक महाराज हमारे बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, मैं उनसे दर्शन करना चाहता हूं, उनसे भेंट करना चाहता हूं, और तुम जाओ द्वारका, जो करना हो करो, मणि खोजो, घर जाओ, जो करना हो करो। बलराम जी थोड़ा सा क्षुब्ध हो गए कि कृष्ण हमको यहां भेजना चाहते हैं, क्योंकि बार बार कृष्ण कह रहे थे कि बहुत निकट आ गए हैं जनक महाराज के पास, तो आप तो चले तो बहुत हैरान हुए हम लोग, ठीक है चले हम लौट गए द्वारका, क्या करेंगे। तब बलराम जी ने कहा कि अरे सब समझ रहा हूँ, ठीक है तुम जाओ द्वारका, हम जा रहे हैं उनके पास, मिथिला नरेश के पास जा रहे हैं, कहकर गए। वहां गए, भवन में प्रवेश किए तो तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय मैथिला प्रीतमानस। महाराज जनक बहुत प्रसन्न हुए और विधिवत बहुत पूजा किए बहुत सामग्रियों से। वास कत्तस्यां कतचिन मिथिलायां समा विभु श्री बलराम जी कुछ वर्ष तक रहे वहां, समाहकार से संवत्सर, कुछ वत्सर रहे, बहुत दिन बिताए वहां पर। तो ये प्रश्न होता है कि महाराज जनक कुछ स्वागत सत्कार में ढिलाई भी किए होंगे जब इतना दिन रह गए, तो कहते नहीं नहीं, मान्यतः प्रीत युक्त न जनके न महात्मना। जनक महाराज एक महान भागवत पुरुष हैं, बहुत प्रसन्न थे बलराम जी के वहां रहने से, उनको जबरदस्ती वे रोके थे और बहुत खुशी के साथ। ततो शिक्षत गदामका ले धातराष्ट्र सुयोधन, वहीं पर दुर्योधन आया बलराम जी का पता लगा करके, और वहीं पर बलराम जी ने उसको गदा युद्ध की शिक्षा दिया था। गदा से कैसे युद्ध किया जाता है बलराम जी ने सिखाया था उसको। तो दुर्योधन का ट्रेनिंग बहुत था गदा युद्ध में, भीमसेन का बल बहुत था लेकिन ट्रेनिंग ज्यादा नहीं लिए थे, दुर्योधन बहुत अभ्यास किया था और श्री बलराम जी ने सिखाया था। अब ये तो बलराम जी की कथा, अब केशव की कथा सुनी जो ब्रज में आकर किया। केशव द्वारका नित्य निधनम सत धन्वन अप्राप्ति च मणिम प्राह प्रियाय प्रियकृत विभु। और उधर उनको तो वंचित किए ही, वंचित का अर्थ है कुछ बात छिपाना श्री बलराम जी से, अब सत्यभामा से भी कुछ बात छिपा रहा। यहां आकर के भगवान ने सत्यभामा जी से अपनी प्रिया से कहा कि सत धनवा का निधन हो गया, मार दिया गया, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिला। जैसे लगता है कि इनको पता ही नहीं है कि मणि क्या हुआ कहाँ हुआ, सब पता है कि अक्रूर जी के पास मणि है। प्रिया या प्रिय कृत विभु, तो सद्धनवा मारा गया यह प्रिया का प्रिय था, वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे अपने पिता के निधन से, इसलिए उसका बदला चुकाकर भगवान ने उसका प्रिय किया। ततः स्वकार्यामा स्वक्रिया बंधुर हतस्वै, इसके बाद भगवान ने वह क्रिया किया जो अपने मरे हुए बंधु के लिए की जाती है। क्या बंधु का अर्थ है ससुर, ससुर मर गए थे और बिना पुत्र के थे, इसलिए कृष्ण ही उनके पुत्र हुए, तो उन्होंने सब क्रिया किया, यहां तक दाह संस्कार भी किया और सब क्रिया किया। साकम सुहृदि भगवान याया शिव संपराय का, परलोक में जीव की शुभ गति के लिए जो जो क्रियाएं अपेक्षित हैं शास्त्र द्वारा लोक द्वारा, वो सब क्रिया भगवान ने किया। याया साम शिव संपराय का, संपराय का अर्थ होता है परलोक में सुख के लिए, शुभ गति के लिए यहां पर कुछ किया जाता है, संप्राय क्रिया कहते हैं। कभी कभी लोग अपने जीवित अवस्था में ही कुछ ऐसी क्रिया कर देते हैं, अथवा जो हम लोग मान लीजिए जीवित है तो ये धर्म करते हैं, बहुत से दान करते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सब संप्राय क्रियाएं होती हैं। इस लोक में भले कोई लाभ न दिखता हो लेकिन परलोक में बहुत बड़ा लाभ है, और खास करके मरे हुए स्वजन के लिए कुछ किया जाता है उसको संप्राय क्रिया कहते हैं। तो भगवान ने सब किया, बड़े ढंग से किया, तो काला नहीं। अक्रूर कृत वर्मा च श्रुतवा सद्धन और बधम व्यसतुर भय वित्रस्त द्वारका यह प्रयोजक। अक्रूर और कृत वर्मा ने जब यह सुना कि सद्धनवा मार दिया गया तो ये लोग भी द्वारका से भाग गए, क्योंकि प्रयोजक सद्धनवा को मणि चुराने में ये लोग इंस्टिगेटर थे, ये कहे प्रयोजक थे, इसलिए ये दोनों भाग। तो जहां तक अक्रूर जी की बात है, भगवान की अनुमति थी इस विषय में कि अक्रूर जी मणि लेकर के जाएं, वो तो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, इसलिए वो ठीक है, भगवान चाहते थे। मणि का वास्तविक उपयोग यही था, किसी के पास धन हो तो यज्ञ हो, दान हो, खूब उत्सव चले, भोजन कराया जाए, तो अक्रूर जी इस विषय में बहुत सिद्ध थे। तो वे तो भगवान की अनुमति से, ऐसा शास्त्रांतर में कथा है कि भगवान से पूछ करके वे काशी चले गए। भगवान ने कहा कि आप जाइए जाइए वहां। काशी उनकी मां का नैहर था, वहां पर एक काशी नरेश थे। तो एक बार वहां वर्षा नहीं हो रही थी काशी क्षेत्र में, तो स्वफल जी, अक्रूर जी के पिताजी वहां गए हुए थे, तो उनके साथ अपनी कन्या का विवाह किया काशीराज ने, काशी नरेश ने। तो वहां खूब वर्षा हुई थी, तब से मान्यता थी कि स्वफल्क जी जहां जहां रहते हैं वहां वर्षा बहुत अच्छी होती है, बीमारी नहीं फैलती है, कोई दुख नहीं होता है शारीरिक मानसिक किसी को। तो उसके बाद यह भी मानता थी कि उनके पुत्र अक्रूर जी भी वैसे ही गुण वाले हैं, वे भी जहां रहते हैं वहां वर्षा होती है, सब सुख रहता है, संपत्ति रहती है। अक्रूर जी में दान देने की बहुत, दान देने का उनको बहुत शौक था, अभिरुचि थी। किसी किसी पुरुष की भोगने में रुचि रहती है, ऐसे घर बनाओ, ऐसा ये करो, ये करो, इसी संकल्प में रहता है। कुछ लोग कैसे भगवान की सेवा होगी या कैसे दूसरे का उपकार होगा, इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। तो अक्रूर जी को दानपति कहा जाता है, कंस भी इनको दानपति संबोधन करता था, दान देने वाले में सर्वश्रेष्ठ। तो अक्रूर जी तो चले गए काशी, जानते थे भगवान। तभी प्रश्न होता है कि कृतवर्मा को क्यों छोड़ दिए थे, कहीं भागा होगा तो भगवान को तो पता होगा। श्रीपा श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि जब अक्रूर जी पर कोई एक्शन नहीं लिया भगवान ने, तो कृतवर्मा पर भी नहीं ले सकते थे। क्यों? कि यदि अक्रूर जी को छोड़ देते और कृतवर्मा को दंडित करते तो भगवान का भक्त पक्षपात प्रकट हो जाता, तो भगवान इसको छिपाना चाहते थे। अगर अक्रूर जी को दंडित नहीं करते हैं और कृतवर्मा को करते हैं तो लोक में प्रकट हो जाएगा कि अक्रूर इनके भक्त हैं, इसलिए वो द्रोह भी करें, दुराचार भी करें, तभी ये माफ कर देते। इसलिए भगवान दोनों की उपेक्षा कर दे, उपेक्षा केवल कृतवर्मा की किए, लेकिन अक्रूर जी को तो जानते थे कि दान कर रहे। तो फिर लेकिन एक बात का बहुत बड़ा प्रचार हो गया कि कृष्ण सब धनवा का वध तो किए, लेकिन अक्रूर भी तो उसने इंस्टिगेट किए हैं, तो उनका कुछ नहीं कर रहे हैं, कृतवर्मा का कुछ नहीं कर रहे हैं। और मणि नहीं मिलने पर लोगों में यह दोष बुद्धि हो गई कि सतधन्वा के पास मणि नहीं है और कृष्ण ने उसका वध किया, कृष्ण को जानकारी है कि मणि किसके पास है, उसका कुछ नहीं करते हैं, वध नहीं करते हैं और सतधन्वा का वध कर दिए, और मणि कहाँ है ये पता होते भी नहीं दंड दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि मणि को चुराने में कृष्ण का हाथ है, ये कृष्ण की योजना से मणि सब चुराया गया। और कृष्ण यह कह करके हस्तिनापुर चले गए थे कि उनको कोई चोर न कहे, ये बात फिर फैलने लगी, जोर शोर से द्वारका में फैलने लगी कि ये मणि चुराने में कृष्ण का हाथ है। सामने देने पर नहीं लेते हैं, लेकिन पड़े हुए हैं कि किसी तरह हमारे हाथ में आ जाए। खुलम खुला लोग अपने घरों में ये सब बातचीत करते थे। भगवान ने सोचा कि तो अद्भुत बात हो गई। तब फिर वे अक्रूर जी को बुलाना चाहते हैं और मणि कैसे उनको मिला, कैसे कैसे सब बातें बताना चाहते हैं अक्रूर जी को बुलाकर। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह हुई भगवान की इच्छा से ही, द्वारका में लोगों के शरीर में कुछ रोग होने लगा, मन बेचैन रहने लगा, पानी भी नहीं बरसता था। अक्रूर प्रोषिते अरिष्टानासन वही द्वारका उपसान, अक्रूर जी बाहर जब चले गए तो ये सब होने लगा। शारीरा मानसास्ता पर मुहूर्त दैविक भौतिका, बहुत से भौतिक दैविक और शारीरिक कष्ट होने लगे। भगवान की इच्छा से हो रहा था, लेकिन भगवान यह दिखाना चाहते थे कि अक्रूर जी के बाहर जाने से ये सब हुआ है, तो अक्रूर को बुलाने का एक बहाना मिलेगा। परंतु इस प्रकार की जो लोग बात कहते हैं उसको दूषित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, ठीक नहीं है कहना है कि अक्रूर के चले जाने से द्वारका में अनिष्ट होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा। क्योंकि मुनि वास निवास किम घर तेता रिष्ट दर्शनम, समग्र मुनि जन कृष्ण में वास करते हैं, उनका मन कृष्ण में लगा रहता है, और ऐसे श्री कृष्ण जिस नगर में रह रहे हैं तो वहां पर अरिष्ट का दर्शन कैसे हो सकता है, कैसे कोई बीमारी पड़ सकती है, कैसे किसी को चिंता ग्लानी दुर्भिक्ष ये सब कैसे हो सकता है। तो यह कहना वास्तव में गलत है कि अक्रूर जी के जाने से होने लगा। वास्तव में भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था, उनकी इच्छा थी कि यह हो। तो लोग आपस में बात करते थे अक्रूर जी के विषय में कि देवे अवर्षति काशी स सफल का या गता हुई, जब देवराज इंद्र वर्षा नहीं कर रहे थे काशी क्षेत्र में तो सफल जी काशी गए थे, वहां उनके साथ अपनी कन्या गांधिनी का विवाह किया काशी नरेश ने, तो बहुत वर्षा हुई थी, तो उस समय से यह मान्यता हो गई कि उनके पुत्र भी उसी गुण वाले हैं। तत्सुतस तत्प्रभावो सब अक्रूरो जत्र जत्र देवो भी बरसते तत्र नोक्तापन मारिका। इस प्रकार से लोग कहते थे कि अक्रूर जहां रहते हैं वहां वर्षा ठीक से होती है, वहां महामारी नहीं फैलती, वहां उपताप नहीं होते, सब कुछ ठीक रहता है। तो वृद्धों के इस वचन को सुनकर, और यह भी भगवान जानते थे कि यही कारण नहीं है, वास्तव में मणि का द्वारका में न होना भी कारण है। भगवान दूसरे के मत को भी कह रहे थे, कुछ लोग कहते थे अक्रूर जी नहीं है इसलिए द्वारका में ऐसा हो रहा है, कुछ लोग कहते थे मणि नहीं है इसलिए हो रहा है, लेकिन वास्तविक बात थी कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी थोड़े देर के लिए कि ऐसा हो, इसलिए हो रहा था। तब भगवान ने मीटिंग किया और कहा कि ठीक है हम अक्रूर को बुलाते हैं। इति मत्वा समान प्राहा क्रूरम जनार्दन, भगवान ने भेजा दूत को काशी और कहा कि आपको भगवान ने बुलाया है। भगवान ने ये नहीं कहा था कि मणि के साथ आइएगा, केवल ये लिखा था कि आप आइए द्वारका, चाचा जी संबोधन करके उन्होंने पत्र लिखा था। तो अक्रूर जी आए तो पूजयित्वा भी संभाष्य भाषणम कथयित्वा प्रिय कथा विज्ञाता खिल चित्तज्ञ स्मय मानुवाच। भगवान ने उनको एकांत में बुलाया अक्रूर जी को और पूजा किया, सम्मान किया, बहुत तरह से प्रेम से बात किया, प्रिय कथा बोले भगवान अक्रूर जी से। कोई भर्सना नहीं कि आपने हत्या कराया या चोरी कराया या करा, कुछ नहीं है कहा, बहुत प्रिय बात भगवान ने कहा। तो सबके चित्त की बात कोई जानते हैं कृष्ण, तो भगवान जान गए कि मणि के प्रति इनकी कोई अपेक्षा नहीं है। मणि है तो सोना होता है, उसे यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, होता है, लेकिन मणि के प्रति कोई इनका आकर्षण नहीं है। अन्यथा ये काशी से आते तो मणि को वहीं रख करके आते हैं, मणि ले करके आए हैं। तो अक्रूर जी को कोई अपेक्षा नहीं थी मणि के प्रति, भगवान ने देखा। तब ये कहने लगे, भगवान ने उनसे कहा ननु दान पते न्यस्त स्त्वी आस्ते सत धनवना श्यमंत को मणि श्रीमान विदित पूर्व में। चाचा जी हमको पहले से ही पता है, देखिए भगवान है साफ बोल रहे हैं, विदित पूर्व में हमको पहले से ही पता है कि सतधनवा ने श्यमंतक मणि आपके पास रखा है। अभी मत पूछिए कि किसने कहा, हमको पहले से ही पता है श्यमंतक मणि आपके पास है, सतधनवा ने आपके पास रखा है। तो देखिए उस श्यमंतक मणि किसका है, तो अक्रूर जी ने कहा तो सत्राजित का है, सत्राजित का है ना, तो सत्राजितो न पत्यत्वाद गृहणीयो दुहितु सुता, सत्राजित बिना पुत्र के हैं। इसलिए उनके संपत्ति को उनकी पुत्री के लड़के लेंगे। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि उनकी पुत्री का पति मैं लूंगा। कितनी शिष्ट भाषा भगवान बोल रहे हैं। सत्राजित को कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी पुत्री अधिकारी है। यह भी ना कहकर के भगवान ही कहते हैं कि उनकी पुत्री के जो पुत्र हैं वे सत्राजित के अर्थात नाना के धन के अधिकारी हो। और सद्धनवा ने आपके पास रखा है, सद्धनवा उसका अधिकारी नहीं है। भगवान ने यह भी कहा कि आप भी अधिकारी नहीं है। उस धन के अधिकारी सत्यभामा के पुत्र हैं। दायम मुनि याप पिंडान विमुख चरणम से शेषितम। वो जो धन का अधिकारी होता है तो वे अपह पिंडान जल और पिंड दे करके श्राद्ध करके जो दायम शेषितम जो दाय बचा रहता है, जो धन बचा रहता है तो उसको वह लेता है। अपने पूर्वज के ऋण से मुक्त होता है उनका पिंडदान करके श्राद्ध करके जो भी खर्च करना है करके, और जो बचता है तो रखता है। तो सत्राजित का जब भी संस्कार किया गया तो संस्कार करके उसमें जो भी धन बचा है तो सिमंतक मणि तो पूरा ही बचा है। तो यह सही सही देखा जाए तो यह सत्यभामा के पुत्रों का हक है। ऐसे शास्त्र उदाहरण भगवान ने दिया कि देखिए किसी के मरने पर उसके धन का अधिकारी कौन कौन होता है, चाहे जीवित ही। किसी व्यक्ति के धन का पहला अधिकारिणी होती है पत्नी। पत्नी दुही तरह और पुत्रियां। पत्नी पहला अधिकारिणी है और अगर पुत्र है तो है ही, लेकिन अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी। पत्नी तो पुत्र के रहते हुए भी अधिकारिणी है। पत्नी स्वदुही तरह पुत्रियां चाहे वह पितर हो। और कदाचित मान लीजिए किसी व्यक्ति के पत्नी भी नहीं है और पुत्रियां भी नहीं है, उसके माता पिता उसके अधिकारी होते हैं, अथवा ये सब अभाव में भाई अधिकारी होते हैं। और तत्सुता दुहितरा अधिकारी होते हैं, मैंने पुत्रियां अधिकारी होती हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि दुहिता मन कहीं विवाह हुआ है लड़की का, वह अपने पति के साथ सती हो जाए तो उसके जो लड़के होते हैं वे धन के अधिकारी होते हैं, अथवा तो भाई के लड़के भतीजा धन के अधिकारी होते हैं। यह गोत्र जाए या अपना कोई बंधु किसी के न रहने पर, अथवा शिष्य या कोई ब्रह्मचारी धन का अधिकारी होता है। ये सब शास्त्र में व्यवस्था है, सब कंप्लीट निर्णित है। ऐसा नहीं कि झगड़ा में पड़ जाए कोई धन की कौन अधिकारी होगा है। तो सत्राजित के धन के अधिकारी सत्यभामा के पुत्रगण हैं। तथापि दुर्धरत्वन्यई त्वयास्तम सुब्रते मणि। मैं इसलिए यह बात नहीं कह रहा हूं कि मणि आपसे लेना चाहता हूं। अन्यों के द्वारा ये मणि दुर्धर है, दूसरा कोई रख नहीं सकता है। जो रखा वो मरा है, आपने तो सामने देखा, भगवान कहते हैं। तो दुर्धर हस्तु अन्यई, अन्यों के द्वारा ये दुर्धर है, कोई इसको नहीं रख सकता है। प्रसेन पहन करके गया वो मरा जंगल में, सत्राजित मरा, सद्धनवा मरा, इसको कोई रख नहीं सकता है। केवल आप ऐसे हैं जो रखे हैं कई साल से फिर भी बहुत अच्छे हैं, तो आप ही रख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अधिकारी हैं सत्यभामा के पुत्र या होंगे, लेकिन वे लोग भी रख नहीं पाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि ये मणि दूसरों को मारे, आप ही के पास ठीक से रहेगा। दूसरों के द्वारा दुर्धर है तो कोई आस्तम सुव्रते मणि, आपके पास मणि रहे क्योंकि आप सुव्रत हैं, बहुत व्रत धारण किए हैं। किंतु एक काम कीजिए कि मणि को ला करके उग्रसेन जी के सामने भरी सभा में दिखाइए और बताइए कि आपको मणि कैसे मिला है। बस इतना ही काम, इस बार मणि आप रखिए, हमको मणि से कोई मतलब नहीं, ये तो सबको मारता जा रहा है मणि, केवल आप ही हैं जो यज्ञ कर रहे हैं इस मणि के द्वारा, आपके पास ठीक है और सबके लिए मारक। तो किंतु माम अग्रज समय न प्रत्येति मणि प्रति, आप रखेंगे आपके अलावा कोई नहीं रख सकता है, लेकिन आपको पता है कि मेरे खास अग्रज मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं मणि के विषय, उनको भी संशय है कि मणि चुरवाने में हड़पवाने में मेरा भी हाथ रहा है, उनको पता नहीं क्या हो गया है, विश्वास नहीं कर रहे। न प्रत्येति पतिया नहीं रहे, न विश्वसिति इति अर्थ, हम पर विश्वास नहीं कर रहे। तो चाचा जी आप मणि ला करके और पूरा पूरा समझाइए कि कैसे आपका मणि मिला हुआ है, बस हमारा अपजस खत्म हो, मणि आपके पास रहे, आप यज्ञ करते हैं मैं जानता हूं। दर्शयस्व महाभाग, चाचा जी आप महान भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप उस मणि को दिखा दीजिए, बंधुनां शांति मावह, बंधुओं में शांति कराइए, कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि न करे। तो भगवान ने यह भी कहा कि और आप ये नहीं कह सकते हैं कि मणि आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अविच्छिन्न मखस्ते दे वर्तन्ते रूपं वेदय, आपके द्वारा जो इतने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं जिसमें सोने की वेदियां बनाई जा रही हैं, तो इसके पीछे आप क्या अपना इनकम दिखाएंगे बताइए? तो मणि नहीं है तो ये सब यज्ञ कैसे कर लेते हैं आप? अब कुछ ने कहा नहीं मणि तो है मेरे पास। तो भगवान ने पहले ही कहा कि आप कह नहीं सकते कि आपके पास मणि नहीं है, नहीं तो सरकार को आपको दिखाना होगा कि इनकम कहां से हो रहा है। और रुक वेदय मखा, जिन यज्ञों में सोने की वेदियां बनाई जाए, अरे बाप इतना या, इतनी या इतना बड़ा इनकम तो मणि के कारण हो रहा है ना? तो कुछ ने कहा कि हाँ तो उसी के कारण हो रहा है, तो केवल दिखा दीजिए। एवं साम भी आलब्ध स्वफलक तनयो मणिम आदाय वासा छन्नम दद सूर्य सम प्रभम। इस प्रकार से जब भगवान ने बहुत प्रेम से उनको समझाया तो वे लाए मणि को, सभा इकट्ठी की गई थी, उग्रसेन जी बैठे थे बड़े आसन पर, श्री बलराम जी भी आ गए थे, सारा समाज भरा पड़ा था। अक्रूर जी लाए मणि को, पहले तो अटैची से निकाले, कपड़ा में रुमाल में लपेटे थे बहुत अच्छी तरह कि प्रकाश बाहर ना जाए, नहीं तो भेद खुल जाता। तो निकाले भरी सभा में, पहले अटैची खोले, खोल करके फिर कपड़ा हटाए, देखे सूर्य सम प्रभ, सूर्य के समान प्रकाश, और दिखाए समंतकम दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रजयात्मनः विमृज मणिना भूयस तस्मै प्रत्यपयत प्रभु। तो भगवान ने लिया हाथ में और कहा कि देखिए ये मणि है, ये समंतक मणि है, चाचा जी आपको ये मणि कैसे मिला आप कृपया सब बात समझाइए। और क्रूर जी ने भरी सभा में कहा कि जब आप दोनों भाई हस्तिनापुर चले गए थे तो हम और कृतवर्मा सब धनवा के घर पर गए, अब जो भी हमारे मन में आया हमने कहा कि मणि क्यों नहीं ले लेते हो और सत्राजीत का वध क्यों नहीं कर देते हो, तो वध किया, इसके बाद हमारे पास सहायता के लिए आया कि हमको बचाओ, हमने साफ जवाब दे दिया हम कुछ नहीं कर सकते, तो मणि हमारे घर रह करके चला गया। तो मैं भी मणि को लेकर अपने मामा के घर चला गया काशी, वहां जाकर के यज्ञ करता था, ये करता था, ये मणि है। तो भगवान के हाथ में मणि था उस समय। तो जब क्रूर जी ने कहा कि हमारी जो भी गलती हो हमें क्षमा किया जाए, ये मणि की कथा है, तब भगवान ने कहा, सबसे पूछा कि सच सच बोलिए सब लोग, आप लोगों को विश्वास हुआ कि मणि कैसे हरण किया गया था, सत्राजीत का वध कैसे हुआ, क्या हुआ? सबने कहा कि वो सब कुछ पता चल गया। तो इस प्रकार भगवान ने मणि दिखा करके अपने बंधुओं में जो उनके प्रति दोष दृष्टि थी, कलंक था, उसको दूर किया। अब इस कथा के श्रवण कीर्तन और स्मरण का फल बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। यस्ते तद् भगवत ईश्वरस्य विष्णुर् वीरजाढ्यं वृजिनहरं सुमंगलं च आख्यानं पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिं दुरितमपो ह्यजाति शान्तिं। जो कोई व्यक्ति परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के इस आख्यान को सुनता है, इस प्रसंग को, दो अध्याय को इधर पीछे वाले को, दो अध्याय की कथा को जो सुनता है, अनुस्मरण करता है और बोलता है, वह दुष्कृति को नष्ट कर देता है, उसका दुर्जस खत्म हो जाता है। और दुर्जस का जो मूल कारण है दुरित अर्थात कर्म बंधन, बुरे कर्मों का फल, वो सब नष्ट हो जाता है। यह प्रसंग वीरजाढ्यम है, भगवान विष्णु की वीरता से, प्रभाव से परिपूर्ण है। ब्रजिन हरम सब प्रकार के दुख को हरने वाला, सुमंगलम च और सुमंगल करने वाला है, सौभाग्य देने वाला है। तो जो कोई इसे सुनता है, कहता है या स्मरण करता है, उसका दूषित कर्म बंधन समाप्त हो जाता है, उसकी दुष्कृति समाप्त होती है और वह शांति में जाती, वह परम सुख प्राप्त करता है, शांति प्राप्त करता है। इस प्रसंग को केवल सुनने, कहने और स्मरण करने से उसे शांति मिलती है। इसमें कहा गया सुमंगलम च और वीरजाढ्यम, भगवान का के वीर्य का इसमें वर्णन है। इतने बड़े धन को भी लेने की भगवान को कोई इच्छा नहीं, जबकि वह उनको धन दहेज में मिला था, खास ससुर ने दिया था, उस पर हक था, फिर भी भगवान उसे नहीं लिए, लौटा दिए। भगवान में कभी कोई लोभ नहीं है, और वो क्या सेमंतक मणि रखकर करेंगे? जिनके पास कौस्तुभ मणि है वो सेमंतक मणि क्या करेगा उसके साथ? हम कुछ भी नहीं। तो भगवान के वीर्य का वर्णन है, भगवान की भगवत्ता का, उनके वैभव का, गुण का वर्णन है इस प्रसंग में। तो कोई भी व्यक्ति जो इसे सुनता है, कहता है या स्मरण करता है, तो उसका सब तरह से मंगल होता है। ब्रिजिन हरम सुमंगलम च, ब्रिजिन का है तो जितना भी दुख आने वाला है वो नहीं आ पाएगा, या आएगा भी तो अति क्षीण होकर के आएगा, तो ब्रिजिन हरम कहता है। और सुमंगलम, जीवन में जो सौभाग्य है, सत्कीर्ति, बड़ा बड़ा कर्म करना, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति आदि, सब इससे होता है। और लास्ट में कह रहे हैं कि इसे दुष्कृति खत्म होती है, किसी पर कोई, किसी का कोई नाम बिगड़ गया है दुनिया में, दुष्कृति, झूठा नहीं, सच्चा, सचमुच गलत काम किया है जिसको धिकारा जा रहा हो समाज में, लेकिन इस प्रसंग को व्यक्ति सुने, कहे, बोले, तो फिर उसके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य होने लगते हैं कि उसकी सब लोग प्रशंसा करेंगे। अब दुर्जस कोई नहीं कहेगा, क्योंकि दुर्जस का जो मूल कारण है वो है दुरितम। दुरित का अर्थ होता है वह कर्म जो फल देना चालू हो गया है, बुरा कर्म, जो दुरित कहते। पीछे जो हम लोग कर्म किए हैं वही कर्मों का ही फल हम लोगों के सामने आता है। तो भगवान की कथा में वो शक्ति है कि पहले के कर्म फल को जलाकर भस्म कर देती है, कथा की विशेषता है। और जीव अपार शांति को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है। शांति मतलब सुख, निश्चिंतता। तो इस कथा का ये फल है। रुक्मिणी मंगल का यह प्रसंग ऐसे अवसर पर यहाँ हुआ भगवान की व्यवस्था से, जबकि मैंने सुना कि कई कन्या और वर का विवाह भी हुआ है, कल भी होने वाला है अमी का विवाह, इसके पहले सर्वेश का हुआ ना। तो इस प्रसंग पर अच्छा लगा हमें कि विवाह के अवसर पर विवाह की कथा परम मंगलमय हुई। तो यही है मंगल का कारण, सुनने वाले, स्मरण करने वाले या कहने वाले सबका मंगल होता है। हम लोग मंगल की कामना करते ही हैं और मंगल होता है भगवान के भजन से। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गर्ण ध्वज, मंगलम पुंडरी काक्षो मंगलायतनो हरि। गरुड़ ध्वज मंगल, विष्णु भगवान मंगल, हरि मंगलायतन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान मंगलायतन है, वे सबका मंगल करें। और सबसे बड़ा मंगल यही है कि जिह्वा पर भगवान का नाम आता रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत फुरारी। भगवान शिव इसका जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण सबका मंगल करें अपनी कथा द्वारा, नाम द्वारा, सब तरह से। सबको धन धन की प्राप्ति हो, आरोग्य रहे, कोई रोग न हो और मनोरथ पूरा हो, शांति प्राप्त हो, यही मैं कामना करता हूँ। और ये तो इसका सहज फल है, हमारे कामना करने न करने में क्या है। ये कथा का बल है कि शांति प्राप्त होगी ही, मंगल होगा ही। बड़े बड़े कर्म बंधन ध्वस्त हो जाते हैं भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से, बोलने से। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग हुआ कि इस अवसर पर ये भगवान के विवाह की कथा हुई। और आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद है कि आपने हमें ये अवसर दिया, स्थान दिया न्यू नवदीप धाम में। गौर निताई के चरणों में मुझे कुछ कहने का सौभाग्य दिया आप लोगों ने, तो मैं बहुत आभारी हूँ। विशेष करके हमारे गुरु भाई श्री समीप ऋषि दास तथा श्री वृंदावन चंद्र दास जी और नील मणि प्रभु ग्रह का मैं बहुत आभारी हूँ। और भगवान कृष्ण के चरणों में आपका प्रेम बढ़ता रहे यही कामना करता हूँ। हरे कृष्ण।